श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तात्पर्य, इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात स्वांश है। उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारी बातें आप समझ गए होंगे। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति के द्वारा निर्मित है, अर्थात जीवात्मा शरीर से पूरी तरह से भिन्न है। फिर भी अज्ञान के कारण, अपनी पहचान शरीर से करने के कारण, वो शरीर का भोग करने का प्रयास करता है, जबकि परमात्मा कभी भी शरीर से अपनी पहचान नहीं करते और कभी भी शरीर के भोगों में वो लिप्त नहीं होते। ये बहुत बड़ा अंतर है जो हमें समझ लेना चाहिए। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। ऐसा कभी नहीं आप सोचना चाहिए कि जीवों की सृष्टि कभी हुई है। जब भी इस बात पे हमें विचार करना हो या हम करें, तो अपने अज्ञान की अनुभूति बड़े आसानी से होने लगेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जीवन में या कभी भी आपको एक सेकंड के लिए 5 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये देता है और फिर एक सेकंड के बाद छीन लेता है, तो उस लाभ का क्या लाभ हो, क्या फायदा, और उस नुकसान से भी दुखी होना क्या अज्ञान नहीं है? तो उसी प्रकार से हम लोग शाश्वत हैं और इसकी धारणा बद्धावस्था में करना ही बहुत मुश्किल है। और इस जगत की छोटी छोटी चीजों में अपनी चेतना को पूरी तरह से अभिनिविष्ट कर देना, दुश्मन दोस्त, सुख दुख, मान अपमान, ये बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। और इससे होता क्या है, जो हमारी मुख्य परेशानी है जन्म मृत्यु का चक्र, उससे हमारा ध्यान हट जाता है कि उसको कैसे सुलझाना है। ये बहुत गंभीर अज्ञान है हमारा। परिवार का बहाना बोल करके और देश का बहाना बोल के, कुछ ना कुछ बहाना करके हम लोग अपने चित्त को भगवान से अलग रखना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से, या फिर सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता का नाम रख दिया जाता है। वस्तुतः वो भगवान की विमुखता ही है जिसकी पैकिंग हम लोग अलग अलग तरह से कर रहे हैं। तो खैर, बात यह है कि जीव नित्य है और ऐसा नित्य जीव इस जगत में फंसा पड़ा है अपनी ही इच्छा के कारण। लेकिन कब उसकी इच्छा आई, कब वो प्रकृति में फंस गया, तो इस शब्द को आप समझ रहे हैं अनादि। उसकी आप शुरुआत कभी ट्रैक नहीं कर सकते कब हुआ ये। वो दोनों ही नित्य हैं। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। कुछ चीजें आप समझ लीजिए कि भौतिक अभिव्यक्ति मतलब भौतिक शक्ति हमेशा रहती है विद्यमान, लेकिन प्रकट हमेशा नहीं रहती। तो प्रकट सृष्टि जो लीला है भगवान की, वो समय, कुछ समय रहती है, उसके बाद फिर समाप्त हो जाती है, फिर कुछ समय रहती है, फिर समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से चलता रहता है। और जीव श्रेष्ठ शक्ति है क्योंकि जीव चेतना से युक्त है और भगवान को प्रेम कर सकता है, प्रेममय संबंध है उसका हर जीव का। लेकिन भौतिक प्रकृति का इस प्रकार से कोई संबंध भगवान से नहीं है, वो जड़ है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। कितने पुराने हैं हम लोग, विचार कीजिए कभी कि कितने समय से हम लोग इस जगत में फंसे हैं। और ये एक ही सृष्टि नहीं है, कितनी सृष्टियां हो चुकी हैं उसके बारे में तो हम सोच नहीं सकते। और हर जन्म में हम सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस कारण से मैं कृष्ण के शरणागत नहीं होगा। तो इस जन्म में भाग्य मिल रहा है भगवद गीता को सुनने का, पढ़ने का, और भगवान का नाम जप करने का, भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करने का, मूलतः भक्ति करने का जो मौका मिल रहा है वो कितने जन्मों के बाद मिल रहा है उसका तो हम विचार ही नहीं कर सकते। अगर कोई बोल दे, कोई बता ही दे, कोई नंबर बता दे तो हम लोग घबरा जाएंगे। 84 लाख योनि में कितना बार भ्रमण करके आए हैं उसका कोई विचार नहीं किया सकता है। तो खैर कहने करती है कि कितना बहुमूल्य है ये मानव जीवन, और उसको हम लोग केवल भोगों में व्यतीत कर दें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न करें, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान होगा। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो वह यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। महतत्व मतलब प्रकृति की प्रारंभिक अवस्थाएं, प्रकटीकरण से पहले। इस प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चीखी वे बद्ध हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। अर्थात जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो सभी जीव भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर जब सृष्टि होती है तो फिर भगवान विष्णु अपने दृष्टिपात के द्वारा प्रकृति में जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। ये भी बड़ी बड़ी बात है कि एक जीव भी अगर वैकुंठ की प्राप्ति करता है पूरी सृष्टि में भी, तो भी कितना बड़ा ये एक अचीवमेंट है इसको हम सोच नहीं सकते। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की शुरुआत में ही बताया था कि इस भगवद गीता को पढ़कर अगर एक व्यक्ति भी भगवान के धाम चला गया तो हम बहुत सफलता मानेंगे। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। बहुत ही सुंदर बात है, इस बात को तो कोई जानते ही नहीं है। ये तो हमें आचार्यों की कृपा से बात मालूम चल रही है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और इस जगत को रचने का उद्देश्य क्या है, ये जगत बनाया क्यों गया है। तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं, ये कृपा ही है कि समझ में आ रहा है कि हम लोग इस जगत में अपनी भोग की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें, लेकिन किसी तरह से भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति सीख जाएं और भक्ति करके वैकुंठ की प्राप्ति कर लें। ये है उद्देश्य, इस जगत में बने रहें और बड़े छोटे बने रहें, इस ये उद्देश्य जगत का नहीं है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। विद्रोही स्वभाव अर्थात ईशाद अपेतस्य, भगवान से विमुख होना, भगवान से विद्रोह की भावना करना, ये सोचना कि मैं भगवान हूँ, भगवान की सेवा करने की क्या आवश्यकता है, ये सब विद्रोह के स्वभाव हैं। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ है। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हो तो ये प्रश्न करना कि मैं कुएं में कैसे गिरा, इसके बजाय ये प्रश्न करना ज़्यादा अच्छा है कि मैं कुएं से बाहर कैसे निकलूँ, तब अपने आप समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग अभी इस बद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, और जैसे यहाँ पे बोला गया अनादि, अर्थात कब जीव का प्रकृति से संपर्क हुआ ये इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। और हमारे जीवन में हम देखते हैं हर वस्तु की शुरुआत होती है और अंत होता है, तो अब अपनी इस विकृत चेतना में इस धारणा को पकड़ पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसीलिए इस प्रश्न पर विचार करने के बजाय व्यक्ति को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि मैं इस प्रकृति से बाहर कैसे निकलूं। शास्त्र में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। ये भी समझ लेना चाहिए इस जीवन संघर्ष क्या है। इंद्रियां हमें लताड़ रही हैं, खींच रही हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, ये भोग प्राप्त करो, वो भाग प्राप्त करो, और हर भोग प्राप्त करने के बाद हम दुखी ही होते हैं, क्योंकि भोग ही दुखों का कारण है। भगवान गीता में बोलते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, एवते मतलब बस दुख की जननी जो है वो भोग ही हैं। तो ये बहुत जन्मों से इस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति हो गई है भोग करने की, तो बड़ा मुश्किल होता है भोगों से अपने को विरत रखना, और अपनी अपनी पहचान अपने शरीर से करने की इतनी आदत पड़ गई है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि वो शरीर नहीं है, वो शरीर से भिन्न है। और इस प्रकार से इस जीवन के संघर्ष में हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णन से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। यानी कि इस शरीर में जो भी विकार हो रहे हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। भले ही जब हम लोग बद्ध हैं तो उससे प्रभावित होते हैं और हमें कुछ उसके लिए आवश्यक करना भी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इससे पृथक देखने का प्रयास करना चाहिए। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं। हाँ, यानी कि जब जीव के विकार के बारे में बात आ रही है तो उसका अर्थात उसके शरीर के विकार के बारे में बात है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जीव में विकार आता है, जीव अविकारी है। इसको भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बोला था, जीव में परिवर्तन नहीं आता लेकिन उसकी जो चेतना है उसमें परिवर्तन आ जाता है जब वह प्रकृति का संपर्क करता है मूलतः भोग की भावना से। तो इस प्रकार से व्यक्ति उसकी चेतना विकृत हो जाती है और वो अपने आप को प्रकृति का ही अंग मांगने लगता है, शरीर मानने लगता है। अन्यथा आत्मा की दृष्टि से सारे जीव जो हैं वो एक ही गुण वाले हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने बहुत सुंदर एक इस पे टीका रखी है कि कह रहे हैं कि जितने भी विकार हैं शरीर के और इंद्रियों के, सुख दुख जो कुछ भी आ रहा है वो प्रकृति के द्वारा आ रहा है, जीव के द्वारा नहीं आ रहा है। तो इस बारे में भगवान ने बोल दिया है यहाँ पे कि जीव जो हैं वो प्रकृति के विकारों से भिन्न है। एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ।